अभिमन्यु के ऐसे बोलने पर वो कुछ और भ्रमित हुआ। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ऐसी क्या बात है इप्सिता, आप हमसे सीधे ही बोल सकती हैं जो भी पूछना है आपको। और सुबह तो हम आपसे। इतना बोलते हुए अभिमन्यु को अचानक पार्टी की बात याद आई। वो इप्सिता के चेहरे की ओर देखने लगा। ठीक उसी वक्त इप्सिता ने भी नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ वही हम भी पूछने आए थे कि पार्टी में कब चलना है। अभिमन्यु ने इप्सिता के मुंह से ये बात सुनते ही उसकी ओर देखकर थोड़ा भ्रमित होते हुए कहा, पार्टी में हमें 8 बजे जाना है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं, आपका तो पार्टी में जाने का मन नहीं था। इप्सिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ वो एक्चुअली अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ घर में बैठकर क्या करेंगे, बोर ही तो होंगे, तो इससे अच्छा है कि हम आपके साथ चलते हैं, इसी बहाने आपके जानने वालों से भी मिल लेंगे। इप्सिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु 2 कदम आगे आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, इप्सिता अगर आप ये सोचकर इस पार्टी में चल रही हैं कि हमें बुरा लगेगा तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आपको ज़बरदस्ती पार्टी में चलने की ज़रूरत नहीं है। इप्सिता बोल ही रहा था कि इप्सिता ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हम सच में आपके साथ पार्टी में चलना चाहते हैं और हम 8 बजे तक रेडी हो जाएंगे। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके अगर आप सच में हमारे साथ चलना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम से रेडी हो जाइएगा। इप्सिता ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ बिल्कुल हम टाइम से पहले ही रेडी हो जाएंगे और आपको लेट नहीं होने देंगे। इतना बोलकर इप्सिता मुस्कुराई और वापस अपने कमरे में चली गई। इप्सिता के जाते ही अभिमन्यु ने फिर से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करने लगा। दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव होते ही अभिमन्यु ने एकदम गंभीर होते हुए कहा, हमारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनो और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सब कुछ 1 घंटे में लेकर आ जाना। एकदम गंभीर होकर अभिमन्यु ने कॉल पर यह आदेश दिया। दूसरी तरफ से भी कुछ आवाज़ आई होगी जो सिर्फ अभिमन्यु को ही सुनाई दी। फिर 2-3 मिनट कॉल पर बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वहां से सीधा लिविंग एरिया में चला गया। वहीं इप्सिता जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसने तुरंत नंदिनी को कॉल किया और खुश होते हुए कहा, नंदिनी हमने अभिमन्यु से बात कर ली है और हम उनके साथ पार्टी में जा रहे हैं। नंदिनी ने ये बात सुनते ही खुश होते हुए बोली, ग्रेट ये हुई ना बात, चल अब अच्छे सा कोई ड्रेस सेलेक्ट कर ले और मेरी बात ध्यान से सुन, अच्छे से पार्टी वाला मेकअप करके जाना, मैं वहाँ पर नहीं हूँ वरना मैं ही तेरा मेकअप कर देती, अगर तूने अपना नॉर्मल फेस वाला लाइट मेकअप किया तो आई स्वेयर मैं वही आकर। नंदिनी बोल ही रही थी कि इप्सिता ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे बाबा ठीक है हम रेडी होने के बाद तुम्हें अपनी पिक सेंड कर देंगे, तुम देख लेना और तुम जब हमारा पार्टी लुक पास करोगी उसके बाद ही हम जाएंगे। नंदिनी ने काफ़ी गंभीर होते हुए कहा, ठीक है अब जाओ टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करो। इप्सिता ने उसकी बात सुनी और कॉल काटकर वो अपना अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। उसके पास पार्टी वेयर टाइप कोई भी ड्रेस नहीं थी क्योंकि उसने परीक्षा के लिए अपनी पैकिंग की थी। उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई मौका आ सकता था, इसलिए ऐसे किसी इवेंट के लिए उसने कोई भी खास ड्रेस पैक नहीं की थी। उसके सारे अच्छे पार्टी वेयर कपड़े उसके घर में ही थे। अपने वार्डरोब की ओर देखते हुए इप्सिता ने अपने मन में कहा, अब इनमें से हम ऐसी कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं जिसमें हम पार्टी रेडी लगे, क्योंकि इनमें से तो एक भी पार्टी वेयर ड्रेस नहीं है, हमने तो खुद ही सारे साधारण कपड़े पैक किए थे। इप्सिता अपनी सारी ड्रेस की ओर देखकर भ्रम में यही सोच रही थी कि वो क्या पहने। इप्सिता के पास जितने भी कपड़े थे उसने उन सबको निकालकर बिस्तर पर फैला दिया और उनमें से 2-3 कपड़े ट्राई किए। उसने आईने में आकर खुद को देखा लेकिन वो कपड़े उसे पार्टी के हिसाब से अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये सब कपड़े तो बड़े ही साधारण टाइप के लग रहे हैं और हमें तो कुछ भारी पहनकर जाना चाहिए, आखिर हम वहाँ पर अभिमन्यु के साथ जा रहे हैं और अभिमन्यु कुंवर है, उनकी वहाँ पर अलग ही इज्जत होगी, अगर हम इतने हल्के कपड़े पहनकर जाएंगे तो पता नहीं क्या समझेंगे हमें सब लोग और हम एक राज परिवार की होने वाली बहू तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा, हम इतने साधारण कपड़ों में से कुछ पहनकर तो नहीं जा सकती, तो फिर क्या करें हम, ऑर्डर करें क्या कुछ। इप्सिता ने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ एक काम करते हैं ऑनलाइन ड्रेस देखते हैं, शायद कोई ड्रेस हमें ऑनलाइन पसंद आ जाती है तो उसे मंगवाकर वही पहन लेंगे। इप्सिता ने तुरंत शॉपिंग ऐप खोली और अपने लिए अच्छा सा कोई भारी गाउन देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कई सारे गाउन देखे लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। देखते ही देखते 2.5 घंटे बीत गए। इप्सिता ने घड़ी की ओर देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे और इतनी देर में उसे कुछ भी पसंद नहीं आया था। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर उसे कोई ड्रेस पसंद भी आएगी तो क्या टाइम पर डिलीवरी हो पाएगी और डिलीवरी होने के बाद क्या वो ड्रेस उसे ठीक से फिट होगी और उसे अच्छी भी लगेगी। ये सब सोचकर उसका अब कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी भ्रमित हो चुकी थी। उसने फ़ोन साइड में रखते हुए कहा, इतनी देर अगर हम यहाँ ये सारी चीज़ देखने में लगा रहे हैं, इससे तो अच्छा होता किसी डिज़ाइनर शोरूम या फिर शॉपिंग मॉल चले जाते और अपने लिए अच्छा सा कुछ खरीद लाते, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, हम अकेले तो शॉपिंग पर भी नहीं जा सकती, उसके लिए भी हमें पहले अभिमन्यु से पूछना होगा। इप्सिता बिस्तर से उठकर खड़ी हुई और वो दरवाजे की ओर जाने ही वाली थी कि अभिमन्यु खुद ही उसके कमरे के अंदर आ गया। वो अभिमन्यु को देखकर बोली, अभिमन्यु अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपके पास ही आ रहे थे। अभिमन्यु इप्सिता के कमरे में आया, उसने इप्सिता के बिस्तर की ओर देखा, इप्सिता ने पूरे बिस्तर पर कपड़े फैलाए हुए थे। उसे देखकर अभिमन्यु बोला, ये सब क्या है इप्सिता, आपने कपड़ों को इस तरह से क्यों फैला रखा है? इप्सिता ने पीछे मुड़कर अपने बिस्तर की ओर देखा। उसका बिस्तर काफी गंदा हो चुका था। उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, वो एक्चुअली हमें इनमें से कोई भी कपड़ा पार्टी में पहनकर जाने के लिए समझ नहीं आया, इसीलिए हम आपसे पूछने आ रहे थे, क्या हम नंदिनी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं? अपने लिए कुछ अच्छा ले आते हैं शाम की पार्टी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वहां पर आपकी बेइज्जती हो। इप्सिता ने जैसे ही ये बात कही, अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, आपकी वजह से हमारी कभी बेइज्जती नहीं होगी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और कपड़ों को लेकर इतनी भी टेंशन मत लीजिए। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी भ्रमित हुई और वो हैरानी से अभिमन्यु की ओर देख रही थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक बैग को इप्सिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। इप्सिता ने उस बैग की ओर देखा, वो काफी भारी था। अभिमन्यु ने उसे कहा, ये आपके लिए है, इसके अंदर दो ड्रेस है, आपको जो अच्छी लगे आप वो पहन लीजिएगा। अगर इसमें से आपको कोई सी भी ड्रेस पसंद नहीं आती है तो आप आधे घंटे में हमें बता दीजिएगा, हम खुद आपको शॉपिंग पर लेकर चलेंगे। इप्सिता ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं इट्स ओके, हम इन दोनों को ही ट्राई कर लेते हैं और फिर इनमें से ही कोई एक पहनकर चलेंगे, आपने ऑर्डर की है तो अच्छी ही होगी, हमें पसंद कैसे नहीं आएगी। अभिमन्यु ने इप्सिता की ओर देखकर कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, हम ठीक 8 बजे यहाँ से निकलेंगे, आप टाइम से रेडी हो जाइएगा।
इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु वहां से चला गया। इप्सिता ने अभिमन्यु के जाते ही तुरंत उस बैग में से उन ड्रेसेस को निकालकर देखने लगी। इप्सिता ने देखा, एक गोल्डन कलर का गाउन था जो काफी भारी वर्क हुआ था, जिस पर ब्लू कलर के स्टोन लगे हुए थे। इप्सिता ने उस गाउन को देखते हुए कहा, हो गॉड, ये तो काफी ज्यादा भारी है, लेकिन काफी ज्यादा सुंदर भी है, लेकिन पहले हम दूसरा वाला देख लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने उस गाउन को साइड किया और उसने दूसरे बैग में से एक और गाउन निकाला। वो डार्क मैरून कलर का ए लाइन गाउन था, जिस पर गोल्डन कलर से काफी हल्का मगर डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बना हुआ था, जो दिखने में काफी अच्छा और प्यारा लग रहा था। इप्सिता ने उस ड्रेस को उठाकर शीशे में अपने सामने लगाया, वो कलर भी इप्सिता पर काफी ज्यादा खिल रहा था। इप्सिता उस गाउन को देखते ही खुश हो गई और प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल हमारी पसंद का है, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था पार्टी वेयर के लिए, ये काफी अच्छा और हम पर सूटेबल भी लग रहा है। अपने आप से इतना सब बोलकर इप्सिता ने उस गाउन को उठाया और उसे लेकर वो सीधे चेंजिंग रूम में गई। कुछ देर बाद वो उस गाउन को पहनकर चेंजिंग रूम से आई, वो गाउन परफेक्टली उसे फिट भी हो गया था। इप्सिता ने उस गाउन को पहनकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखा, वो उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसके फिगर पर वो एकदम परफेक्टली फिट हो गया था, जैसे कि उसके लिए ही बना हो। बस गाउन पहनकर ही इप्सिता काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन सिर्फ वही पहनकर तो वो नहीं जा सकती, इसलिए तुरंत ही वो बाकी सारी चीज भी ढूंढने लगी। अभिमन्यु ने 2-3 बड़े बड़े बैग देकर गया था, तो इप्सिता ने उसी बैग में फिर से देखा और उसे दूसरे बैग में उन दोनों गाउन से मैचिंग अलग अलग हील्स और ज्वेलरी भी मिली। इप्सिता ने थोड़ा सा उत्साहित होकर उस ज्वेलरी को देखा, जहां तक उसे समझ आया वो सब काफी ज्यादा महंगी और डिजाइनर डायमंड की ज्वेलरी थी, और जो मैरून वाले गाउन से मैचिंग ज्वेलरी थी उसमें बीच में एक रूबी लगा हुआ था, जो उसी मैरून कलर के ड्रेस से भी मैच कर रहा था। इप्सिता ने उस गाउन से मैचिंग सारा सामान निकालकर साइड में रखा और फिर उसने जल्दी से उसी गाउन में अपनी एक सेल्फी क्लिक की और उसे तुरंत नंदिनी को भेज दिया। नंदिनी ने जैसे ही वो पिक देखी उसने हैरान होते हुए कहा, वाह कितना प्यारा ड्रेस है। उसने तुरंत इप्सिता को कॉल कर दी। इप्सिता ने उसका कॉल पिकअप करते हुए कहा, कैसा लगा ड्रेस? नंदिनी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बाय गॉड तू बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लग रही है, बस इस पर तो मैचिंग मेकअप कर लेना, आई स्वेयर पूरी पार्टी में सब तुझे ही देखेंगे, लेकिन तू ये बता ये गाउन कब खरीदा तूने?